और आप लोगों से अनुरोध है जोरदार करतल ध्वनि से भाई साहब का स्वागत। बैचेस के द्वारा आदरणीय सूरज भाई जी,
लाइट करेंगे, मैं बोलता हूँ कुछ। ओम शांति। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले 3 मिनट हम डीप साइलेंस में बैठेंगे। बिल्कुल आत्मा यहाँ है, रूह हमारे अंदर कितनी शांति की शक्ति है, जरा 3 मिनटों में अपने अंदर छुपी हुई शांति से मिलेंगे। चलो डीप साइलेंस, रेड लाइट करेंगे, मन बिल्कुल एकाग्र, आत्मा पर, आत्म चिंतन में। मैं चमकती हुई ज्योति रूह, इस देह की मालिक, इस देह से न्यारी, भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान, शांत स्वरूप हूँ मैं। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। कैसा लग रहा है सभी को यहाँ? अति सुंदर, बहुत अच्छा। अब इस जीवन को भी बहुत सुंदर बनाना है। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, ये प्रभु की सुंदर सौगात है, इसे हमें सुंदर बनाना है। आप सब देख रहे होंगे सृष्टि के इस चक्र में हम सभी ने अपनी यात्रा सतयुग से प्रारंभ की थी। सतयुग का स्वर्ण काल बीत गया, त्रेता युग में हम सब आए, उसका भी बहुत सुंदर काल, धर्म संपन्न राज बीत गया, द्वापर में आ गए। उसमें भी बहुत सुंदर काल का सभी ने अनुभव किया, ये आप सब जान जाएंगे धीरे धीरे। इतिहास बहुत चीजों को वर्णन नहीं करता है। कलयुग में आए और अब हम ऐसे कलयुग में पहुंचे हैं जहां मनुष्य के संबंधों में कड़वाहट है, जहां मनुष्य के अंदर स्वार्थ धन का लोभ बहुत बढ़ गया है, जहां विषय वासनाओं ने उसके जीवन को सुखों से दूर कर दिया है। सोचना है सभी को, ऐसे समय में हम समस्याओं से मुक्त रहें, हमारा चित्त निर्मल रहे, हम शांत रहें, हमें क्या करना है। चलते चलते भी संसार में किसी के जीवन में कई बुरी चीजें आ रही हैं, हम देख रहे हैं। मेरा लोगों से कांटेक्ट रहता है बहुत, मैं देखता हूँ रोज 4-5 केस डिप्रेशन के आते हैं। लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो सोचते हैं डिप्रेशन का इलाज मेरे पास है और हम जो उन्हें कुछ अलौकिक ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति के प्रयोग सिखाते हैं उससे बहुत जल्दी डिप्रेशन ठीक हो जाता है, नींद अच्छी आने लगती है। तो हम सभी को बहुत जरूरत है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की। सभी इस बात पे ध्यान देंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं। क्यों भूल गए हैं? भौतिकता की भागदौड़ में, संसार के बुरे बुरे आकर्षणों में, बिल्कुल अपने को भूल कर, अपने बारे में सब कुछ भुलाकर इस बाह्य संसार में ऐसे तल्लीन हो गए कि हमारी शक्तियां हमसे बिल्कुल भूल गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे सभी को ये रियलाइज करना है कि हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। वो शक्तियां लड़ने झगड़ने वाली नहीं। कई लोग सोचते हैं शक्तिशाली वो है जो खूब लड़ाई करे, ये व्यक्ति बड़ा पावरफुल है, बड़ा जोर शोर से बोलता है, सबको दबा के रखता है। ये शक्ति नहीं होती, ये तो शक्ति का दुरुपयोग है। एक उदाहरण आपके समक्ष, शेर का बच्चा क्या होगा? बोलो जरा, मेरी ओर ध्यान दो इधर से सभी भाई बहने, शेर का बच्चा क्या होगा? सब उसके गुण बच्चे में होंगे ना। हम सब भी जरा गौर करें, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं हम, उसके बच्चे हैं जो शांति का सागर है, हम उसके बच्चे हैं जो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, मुक्ति दाता है, तो हम क्या होंगे? हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, तो हम क्या होंगे? होंगे या नहीं शक्तिशाली? ये सत्य है कि हम, हमारे पास शक्ति है माया को जीतने की, हमारे पास शक्ति है काम क्रोध अहंकार को नष्ट करने की, हमारे पास शक्ति है अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर देने की। रियलाइज करेंगे आप, हर एक के सामने जब कोई भी समस्या आती है, सब अपने अपने जीवन पर एक नजर डालें। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि समाधान हमारे पास होते हुए भी हमें वो दिखाई नहीं देता। जैसे कई माताओं को होता है घरों में, किचन में माचिस हाथ में है और ढूंढ रही अलमारी में माचिस, पता नहीं कहाँ रख दी। माताएं जानती है, माताओं से बहुत होता है, कुकर की सीटी सामने ही रखी है, दूर दूर ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दी। हम अपनी शक्तियों पर ध्यान देंगे। आज मेरा लक्ष्य है इस क्लास के लिए कि सभी भाई बहने संत महात्माएं जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको तो दूसरों को ये सब याद दिलाना है, जगो हुओ सोए हुओ को जगाना है, सोई हुई शक्तियों को जागृत करना है, सभी को आज अपनी शक्तियों को पहचानना भी है और कहाँ शक्तियाँ नष्ट होती हैं, कहाँ उन कैसे कैसे हमें उनमें वृद्धि करनी है, क्या करें हम, इस सब को भी जान लेना है बहुत अच्छी तरह। मैं आजकल की भाषा के साथ प्राचीन काल से एक चीज ले चलता हूँ आपको। महाराज का स्वागत है भाई, ताली बजा दो सभी जरा। अभी मैं विदेश के कई देशों में होकर आया, अभी 3 दिन पहले ही आया हूँ। जहाँ तहाँ लोग एक टॉपिक रखते थे, हालांकि मैं तो उस बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे लिए तो वो सहज था, पर देखो संसार में कैसे कुछ चीजों की बहुत जरूरत पड़ती जा रही है। सिंगापुर में पब्लिक प्रोग्राम हुआ, इतने ही भाई बहने थे जितने यहाँ आप सब बैठे हैं। एक ही टॉपिक था कि योग अभ्यास के द्वारा यानी मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग पावर, रोगों को ठीक करने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरी सब जगह एक और टॉपिक था कि जीवन तनाव से बहुत भर गया है, स्ट्रेस है, कैसे जीवन को सरल बनाया जाए। सिंगापुर में भारत के बहुत सारे इंजीनियर आईटी के लिए काम करने गए हैं, पैसा तो बहुत मिलता है उनको, 3-4 लाख पर मंथ भारत का, लेकिन 12 घंटे काम करना, एक एक घंटा आने जाने में लगाना, 14 घंटे की बिजी लाइफ। तो सब पूछते थे कि पैसा तो मिल रहा है लेकिन जीवन का सुख तो चला गया है, धन ही धन रह गया है, जीवन आनंद से दूर होता जाता है। जब वो सब सभा में आए थे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मुझे पता तो था कि आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है भाई, सभी अच्छे अच्छे इंजीनियर बैठे हैं, MBA किए हुए बैठे हैं, आपने खुशी कहाँ छोड़ दी। तो एक दो ने बोला, बहुत स्ट्रेस रहता है, ब्रेन पर दबाव रहता है, हमें सीखना है, हम अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करें। मैं शुरू करता हूँ एक बहुत सुंदर बात से, जिस बात ने मुझे मेरे बचपन में बहुत आकर्षित किया श्रीमद् भगवत गीता की, मुझे अध्याय और श्लोक तो अभी याद नहीं है, उसमें है, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। मैं बहुत पूछता था बचपन से, इन चीजों का बहुत शौक था, साधु संत महात्माओं से मिलते रहते थे, मैं पूछता था ऐसा योगी क्यों कल्याणकारी है। मान लो वो एक गुफा में बैठ के हिमालय में केवल तपस्या कर रहा है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति संसार के लिए अति कल्याणकारी है। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला और मन की शक्तियों की अच्छी पहचान मिली तो एक रहस्य समझ में आ गया, जो योग करते हैं, मन को शांत करने का अभ्यास करते हैं, वो इस बात को बहुत ज्यादा समझ पाएंगे। जब हमारा मन शांत हो जाता है, शांत जिसको ने संकल्प समाधि भी कह देते हैं, शांत हो गया मन, तब हमसे बहुत पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है। ये वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करते हैं, इसलिए संत महात्माएं, पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं, योगी आत्माएं इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। उनके पवित्र वाइब्रेशंस संसार को बिना मांगे ही सब कुछ देते रहते हैं। हम सबको भी अपने मन को शांत करना है। मन को शांत करने की पहली चीज कि मन को व्यर्थ के संकल्पों से, निगेटिव संकल्पों से हटाना है। ये कलयुग के समय का बहुत गहरा और बुरा प्रभाव हो गया है। न चाहते भी मनुष्य व्यर्थ संकल्पों में, निगेटिव विचारों में रहता ही है। विज्ञान ने कुछ ऐसे साधन मनुष्य को दे दिए हैं जो विज्ञान का वरदान भी है, लेकिन साथ साथ बहुत मनुष्यों के लिए जो अभिशाप भी बनकर रह गया है। कौन सा है वो? एक तो मोबाइल, बहुत अच्छी चीज है, सबके हाथ में है, फटाफट कहीं भी बात कर लो, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट सेकंड लगता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। पहले बड़ी कठिनाई होती थी, वरदान, लेकिन अभिशाप कैसे है ये आप सब जानते हैं। दूसरी गिफ्ट कौन सी है? इंटरनेट, कंप्यूटर में भी इंटरनेट, बहुत अच्छी चीज, सारे काम घर में किए जा सकते हैं, सरल कर दिया जीवन को। लेकिन अगर गलत साइट पर युवक जा रहे हैं तो उनके दिमाग के लिए बहुत बुरा भोजन उससे मिल रहा है, युवक पथ भ्रष्ट हो रहे हैं और मनुष्य की एकाग्रता नष्ट होती जा रही है। हम अपने चित्त को शांत करेंगे। सभी जो ग्रस्त में रहने वाले भाई बहने बैठे हैं, मैं पहले उनसे कहूंगा, चित्त को शांत करना लक्ष्य बना लें। हमारी शक्तियां बिखर कर नष्ट हो जाती हैं जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब हम व्यर्थ सोचते हैं। ध्यान देंगे आप इस चीज पर, शक्तियों का वास मन में है। हमारे पास दो मुख्य चीजें हैं, आज सभी ने सवेरे की क्लास में सुन ली हैं, मन और बुद्धि, सबके पास है ना? दोनों कितनी सुंदर चीज हैं। मन, इसमें शक्तियों का वास है, और बुद्धि, इसमें विवेक का निवास है। विजडम, सत ज्ञान, सद विवेक, सद्भावनाएं, हमारी शक्तियां और गुण, ये सब हमारी बुद्धि में वास करते हैं। सभी को ये बिल्कुल क्लियर हो, ये मन और बुद्धि जो हमारी जीवन रूपी गाड़ी के दो सुदृढ़ पहिए हैं, इनमें से दोनों ही कमजोर हो गए, एक तो टूट फूट गया है। कौन सा? एक पहिया तो टूटता जा रहा है। कौन सा? मन। और बुद्धि? सभी बुद्धिमान भाई बहने यहाँ बैठे हैं, विचार करें। लोग कहते हैं आज मनुष्य जितना बुद्धिमान है उससे पहले कभी नहीं था इतना, कहते हैं ना, कितने कोर्सेज निकले हुए, कितनी तरह की एजुकेशन है मनुष्य के पास। लेकिन एक बात भी सब स्वीकार करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य तो है, लेकिन जितना परेशान मनुष्य आज है उतना भी पहले कभी नहीं था। ठीक है या नहीं? बिजनेस बढ़ गए, धन संपदा बढ़ गई, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, घर घर के आगे कारें खड़ी हो गई, सब डिग्री होल्डर हो गए, एजुकेशन का बहुत प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन सद्विवेक प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान दें आप, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज सद्विवेक प्रदान नहीं कर रही हैं, केवल इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अगर आप में से कोई प्रोफेसर बैठे हो यहाँ, मेरी एक प्रोफेसर से बात हो रही, उन्होंने ही मुझे कहा कि इन कॉलेजों के ज्ञान को आप ज्ञान न कहो, ये तो मात्र इन्फॉर्मेशन है, जो किताबों में लिखा वो हम पढ़ा देते हैं, उसके आगे पीछे न हमें आता न उन्हें आता। बुद्धि में सद्विवेक का अभाव मनुष्य को पथभ्रष्ट कर रहा है। दोनों पहियों को हमें ठीक करना है। सभी रियलाइज करें, मन और बुद्धि, मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त करना है और बुद्धि को सद्विवेक से भरना है। यहाँ जब आप आए हैं कारोबार से मुक्त, तो यहाँ स्वयं का दर्शन करें बहुत अच्छी तरह, स्वयं के बारे में चिंतन करें, हम अपनी बुद्धि में सद्विवेक कैसे भरें, अपने मन को एक सुंदर दिशा कैसे दें ताकि हमारे मन का हर विचार हमारे जीवन को आनंदित कर उठे। ये मन ही तो है जो सोच सोच कर मनुष्य को परेशानियों में डाल देता है, ये मन ही तो है जो उसे पथ विमुख कर देता है, ये मन ही तो है जो किसी मनुष्य को शिखर पर ले जा सकता है, किसी को नीचे गिरा देता है। हमें मन को सही दिशा देनी है। सब यहाँ शांत में, बहुत सुंदर जगह आप पहुंच गए हैं, सुंदर जगह है ना। प्रोग्राम तो ऊपर था आप सबका, लेकिन प्रकृति ने कुछ बाधाएं उत्पन्न कर दी। ऊपर और भी सुंदर स्थान है हमारे दोनों, ऐसे हैं कि जहाँ जाते ही मनुष्य स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज हो जाता है। जाने से ही दो चार घंटे लोग रहते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी चार्जिंग हो गई है। तो सभी मेरी इस बात पे गौर करेंगे, रोज 15 मिनट यहाँ, 3-4 दिन आप हैं, अपने से बातें करना, जीवन का क्या लक्ष्य था, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे, क्या करने लगे हैं, कहीं लक्ष्य विहीन तो नहीं हो गया है जीवन। सभी चिंतन करेंगे स्वयं पर। और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है जो मैंने अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास किया कि हम संसार से बहुत कुछ लेते आए हैं, प्रकृति ने भी हमें युगों से सब कुछ प्रदान किया है ना। हंसी की बात, अगर प्रकृति कह दे मैं हजारों साल से तुम्हें वायु देती आ रही हूँ, जरा एक मिनट रेस्ट तो कर लूँ, क्या हो जाएगा? राम नाम सत। देखिए प्रकृति के कितने उपकार हैं हम पर, हम शायद महसूस भी नहीं करते। रोज मजे से भोजन खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, हवा श्वास ले रहे हैं, और हमें ये एहसास नहीं है कि प्रकृति हम पर कितना उपकार कर रही है। हम संसार से लेते आए हैं, प्रकृति ने भी हमें बहुत कुछ दिया है और इस संसार से भी हमने बहुत कुछ पाया है। मैं आप में से उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेंगे, अब हमें संसार को प्रकृति को बहुत कुछ देना है। जब हम इस संसार से जाएं, चिंतन करना मेरी इस बात पर, तो संसार को बहुत कुछ देकर जाएं, ऋणी बना कर जाएं। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, शंकराचार्य हुए, 100-125 साल पहले स्वामी विवेकानंद आए, कई जैन मुनि आए, बहुत अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न धर्मों में अच्छे अच्छे पावरफुल लोग हुए, जो संसार को बहुत कुछ देकर गए, हम उन्हें याद करते हैं। हमारे देवी देवताओं के भी हम मंदिर बनाते हैं, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ दिया, इसलिए उन्हें हम याद करते हैं। हम संसार को कुछ देकर जाएं, लेते तो आए हैं। आप इस पवित्र स्थान पर आए हैं, जरा ये गुड फीलिंग्स अपने अंदर भर दें। अब हमें देना है, शुरुआत करें प्रेम देना है, शुरुआत करें अच्छे वचन बोलकर दूसरों को सुख देना है। और याद रखेंगे सभी, कर्मों का यही सिद्धांत है, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। हम रोज देखते हैं, हम थोड़े भी कटु वचन किसी को बोलें, सुनेंगे क्या मीठे वचन? दो कड़वे वचन बोलेंगे, 4 सुनने पड़ेंगे। सुख देंगे, सुख मिलेगा। प्यार देंगे, प्यार की गंगा बन जाएंगे, सम्मान देंगे, सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। तीनों बात याद करेंगे सभी भाई बहने, पसंद है? मैं केवल लेक्चर देके चला जाना नहीं चाहता यहाँ से, पसंद है? देंगे तीन चीजें, महात्माओं को तो संसार को देना है, मैं गृहस्थियों को भी कह रहा हूँ, अपने गृहस्थ से प्रारंभ करें, अपने मित्र संबंधियों से, अपने फ्रेंड सर्किल से प्रारंभ करें, देना है। अब हम चलेंगे पहले एक गुड फीलिंग की ओर, महसूसता, एक बहुत गहरी चीज जिसको भुला बैठे हैं विशेष रूप से हम भारतवासी, और वो ये है, हमारे यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के भाई बहने बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है, हमारी सभा की ये ब्यूटी है कि सभी धर्मों के संत महात्माएं गुरुजन हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक गहरी बात की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ। अभी अभी सिंगापुर में ही एक लक्ष्मी नारायण के मंदिर में प्रोग्राम हुआ, जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे कहा कि और कुछ कहने से पहले आप श्री लक्ष्मी नारायण के बारे में कुछ अवश्य बोलना। मेरे लिए बहुत सुंदर विषय था ये, हालांकि टॉपिक दूसरा दिया हुआ था। मैंने सभा से पूछा, लोग तो 200 ही थे पर सब भक्त क्वालिटी अच्छे विचारवान लोग आकर बैठे थे, मैंने पूछा क्या आपने कभी चिंतन किया हमारे मन में इन अपने महान देवताओं के प्रति प्रेम और सम्मान क्यों है? हम इन्हें देखते हैं नतमस्तक हो जाते हैं, हम इन्हें देखते हैं बहुत प्यार उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, श्री राम के में जाते हैं, देवी दुर्गा अम्बा महाकाली इन सब के मंदिरों में जाते हैं, और भी आप सभी भिन्न भिन्न अपने बड़ों के मंदिरों में या उनके स्थानों पर जाते हैं, क्यों हमारे मन में इनके लिए इतनी ज्यादा सम्मान की भावना है जो पूजा पाठ में बदल गई है? इसका कारण यही है कि ये सब हमारे पूर्वज हैं, हमने अपने और इनके बीच में काफी दूरी कर दी है, वो भगवान हम उनके भक्त, वो पता नहीं कहाँ हम यहाँ, हम उनके वंशज हैं, सभी सत्य को पहचाने, इसलिए उनकी बहुत सारी क्वालिटीज भी हमारे अंदर हैं, देवत्व भी हमारे अंदर है, शक्तियां तो हमारे अंदर हैं ही, लेकिन देवत्व सद्गुण सद्भावनाएं निष्फल निष्काम प्रेम निस्वार्थ भावनाएं पवित्रता श्रेष्ठता सत्यता निर्मलता निरहंकारिता, ये सब जो देवत्व है ये भी हमारे अंदर है, हम देवों की संतान हैं, सभी रियलाइज करें इस सत्य को। जब हम सतयुग में इस धरा पर अवतरित हुए थे, आत्मा आई थी ना अपने नाम से, शरीर हमें यहाँ मिले हैं, हम सभी देवता थे, देव तुल्य थे, अपने अंदर छुपे हुए उस देवत्व को जरा पहचानेंगे। मैं चाहूंगा 3 मिनट हम डीप साइलेंस में बैठें, डीप साइलेंस, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जरा पहचाने, उसे जागृत करना है हमें, हम देवों की संतान। देवत्व से भरपूर हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता समाई है, हमारे अंतर मन में सभी के लिए प्रेम और सद्भावनाएं भरी हैं। रूह पर केंद्रित कर दें अपने को, रूहानी प्रेम से भरपूर हूँ मैं, प्रेम और सद्भावना, बहुत ही सुंदर धारणाएं हैं मनुष्य के जीवन की। लेकर जाएं साथ में यहाँ से सब आत्माओं के लिए निश्चल प्रेम, कोई किसी भी धर्म का है, सब हमारे हैं। ये एक परिवार है सुंदर, संसार को एक परिवार की नजर से देखें, भेदभाव नहीं, सब रूहें, सब आत्माएं, सोल्स, सब हमारे अपने। आप ये देखेंगे, मैंने बहुत जगह इसके प्रयोग कराए लोगों से, अपनी सद्भावना और प्रेम के माध्यम से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा, एक सुंदर अनुभव आज ही मैं सुन रहा था। हम स्टूडियो में जाते हैं कुछ रिकॉर्डिंग करने, एक रिटायर्ड मिलिट्री वाला सेवा में आया हुआ, आते ही मुझे कहने लगा, मैंने आपकी क्लासेस से बड़ा लाभ उठाया, मुझे ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा एक तो सुनाओ। ये था ऑफिसर, लेफ्टिनेंट था, इसके साथ इसकी पूरी प्लाटून थी, पाकिस्तान बॉर्डर पर इनको भेजा हुआ था, उधर से भी बहुत कुछ, कोई आपदा का समय था, उधर से भी गोलियां चलती थी, इधर से भी। तो कहा एक गोली मुझे आकर लग गई, ये बैज जैसा मैंने पहना हुआ उसने पहना हुआ था, और गोली बैज पे लगी। देखिए वंडरफुल बात, अगर वो अंदर लग जाती तो हार्ट और तुरंत मृत्यु। कहा मैं बेहोश होकर गिर गया, लेकिन 5-7 मिनट में होश आ गई। मैंने अपने सभी साथियों को सिखाया कि जो सामने पाकिस्तान की सेना है उसके लिए सद्भावनाओं के वाइब्रेशंस भेजो, रोज 1 घंटा मेडिटेशन कराया सबको। आप सोच लें, एक व्यक्ति जो मिलिट्री का ऑफिसर है अपनी पूरी टीम को 1 घंटा वहाँ मेडिटेशन करा रहा है, और कहा अपोजिट में जो सेना है पाकिस्तान की उसको हमने शांति के वाइब्रेशंस दिए, और क्या परिणाम हुआ? कहा 7 दिन के बाद ही उन्होंने सफेद झंडा ऊपर कर दिया, हम शांति चाहते हैं। मैंने कहा इतना अच्छा अनुभव तुम्हें तो हमारे स्टूडियो में आके सुना देना चाहिए, सब लोग सुन लें। कहा फिर हम लोगों ने उनके लिए प्रेम की भावना अपने मन में पैदा की, सबको मैंने सिखा दिया कि ये सब भी तो हमारे भाई हैं ना, शत्रु सेना में खड़े हैं वो तो उनकी नौकरी है, इसलिए आए हैं, भेजा गया उनको, हमारे भाई हैं सब। और कहा 5-7 दिन के बाद ही हमने देखा कि उनका और हमारा आपस में मिलना जुलना होने लगा, क्योंकि शांति तो शुरू हो गई थी, दोनों तरफ से सफेद झंडे खड़े कर दिए थे। तो इतनी सुंदर बात मैंने देखी, वो व्यक्ति इतना एनर्जेटिक है, यही स्टूडियो में सेवा करने आया है, लेफ्टिनेंट रहा है, फिर उसको चोट वोट लग गई थी तो उसने रिटायरमेंट ले लिया, कमांडो का कोर्स भी किया था। तो हमारी सद्भावनाएं शत्रु को भी मित्रवत बना देती हैं। मैं आपको कुछ 2-4 अनुभव सुना देता हूं, आपको काम आएंगे सभी को, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव मेरे पास इन चीजों के आए। गांधीनगर से, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, एक सरकारी ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और कहा मेरा जो ऑफिसर है मुझे बहुत ही तंग करता है और मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि रिजाइन कर देना चाहता हूँ इस नौकरी से। मैंने कहा तुम्हारा परिवार है, रिजाइन करने से तो तुम कठिनाई में पड़ जाओगे, सरकारी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, कई सालों की नौकरी हो गई, तुम एक प्रयोग कर लो मेरे कहने से और फिर बात करेंगे। मैंने उसे कहा 11 दिन कर लेना, रोज जब सवेरे उठो 7 बार याद करना, मैंने जो शुरू में आपको एक बात कही, हम भगवान की संतान हैं, वो सर्वशक्तिवान है, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हम इसे सब देते हैं, इससे सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पहले 7 बार ये संकल्प करना और फिर उसे आत्मा देखकर, जो आपका ऑफिसर है, रूह देखकर संकल्प देना, यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। पांच दिन किया था उसने, छठे दिन फोन किया कि ये सत्य हो गया, वो मेरा गुड फ्रेंड बन गया। और जब गुड फ्रेंड बन गया तो उसने मुझे बहुत प्यार से बुलाया और बैठाया और कहा, देखो भाई तुम ख्याल न करना, मैं घर से बहुत टेंशन में आता था, मेरे घर में बहुत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर मैं ऑफिस में आता था और तुम मेरे पास होते हो तो मैं सारा गुस्सा तुम पे उतार देता था। टेंशन को ट्रांसफर कर देते हैं लोग इस तरह। फ्रेंडशिप हो गई। मैं बहुत करा है ये प्रयोग। किसी का पति बहुत लड़ाई करता है पत्नी से, जीवन दुभर हो जाता है, हम उनको ये सिखाते हैं रोज सवेरे उठकर उसे गुड फीलिंग दो, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत प्यार है, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, और बहुत जल्दी संबंधों में मिठास आ जाती है। हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है। मैं जानता हूँ आप सभी ये सुनना चाहते हैं कि जीवन की समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, क्योंकि ये सब बढ़ती जा रही हैं। आजकल बीमारियां भी ऐसी बढ़ रही हैं कि मेडिकल साइंस, सारे संसार की मेडिकल साइंस फेल होती जा रही है। कल ही मुझे एक ऐसा संदेश आया फोन से, एक माँ छोटी आयु की रोने लगी फोन करते ही। मैंने कहा बात तो बताओ, दो बच्चे हैं, एक एक साल का एक तीन साल का, न दोनों कुछ खाते न दूध पीते, मैं हैरान हूँ ये जी कैसे रहे हैं, तीन साल हो गए बच्चे को और मैं उन्हें देख देख दुखी रहती हूँ, मैं क्या करूँ। देखिए कितनी बड़ी समस्या है, कोई डॉक्टर की समझ से परे। ऐसे ये केस लंदन का मेरे पास आया था, तीन साल की बच्ची, तीन साल हो गए उसने कुछ नहीं खाया है, वीक होती जा रही है, सारे डॉक्टर्स मिलकर असफल, कहा हमारी समझ से परे, हम क्या करें, हमारी कुछ भी ख्यालों में नहीं आ रहा है। स्पिरिचुअल पावर, योग की शक्ति इन सभी चीजों का समाधान कर देती है। मैं एक दो आपको अनुभव सुनाऊंगा बहुत अच्छे, और आप सबको भी विश्वास हो जाएगा कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही है। इसलिए समस्या आने पर अपने को इतना विचलित न कर दें कि समाधान भूल जाए। सार में जीवन की एक तिहाई समस्याएं सोचेंगे इसलिए हैं क्योंकि जीवन है, जीवन है तो बातें रहेंगी। एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से बहुत दुखी एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां कोई समस्या ना हो। कहां, बिल्कुल ऐसी जगह है, चलो मेरे साथ। ले गया, 10 मिनट में शमशान में पहुंच गए कि यहां लेट जाओ, कोई समस्या नहीं रहेगी। कहा महाराज यहां तो मैं मरने के बाद लेटूंगा ना। तो कहा जब तक जीवन है कुछ तो रहेगा, रहेगा या नहीं भाई। महात्माओं ने संन्यास ले लिया लेकिन शरीर तो कलयुग का ही है ना, कोई ना कुछ बीमारी लगी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, चलते चलते ही गिर गए बिना मतलब, टांग में फ्रैक्चर हो गया, लेना एक न देना दो, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो 1/3 समस्याएं जब तक जीवन है हैं, उनको हमें स्वीकार करना ही है और उनको पार करने के लिए अपना सद्विवेक का प्रयोग करना है, मन की शक्ति का प्रयोग करना है। दूसरी 1/3 समस्याएं मनुष्य की अपनी कमजोरियों के कारण हैं। सहनशीलता की कमी है, क्रोध बहुत आता है, अहंकार बहुत है, दूसरे की बात सुनते ही नहीं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और एक तिहाई जो समस्याएं बचती हैं वो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण है, उनसे भी तो कोई बच नहीं सकता, किया हमने तो भोगेंगे भी तो हम ही ना। तो मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि जब पाप करते आनंद मनाया था तो भोगते हुए भी तो आनंद मना लो, भोगेगा कौन जब किया तुमने है। इन तीनों चीजों को हमें समाधान करना है। पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को योग अग्नि में जलाया जा सकता है, ज्ञान और योग के बल से अपनी कमजोरियों को मिटाया जा सकता है, और बाकी जो समस्याएं एक तिहाई जीवन में हैं, उनके बारे में आप एक छोटा सा दृष्टिकोण आज से अपना लें। याद रखेंगे, ये स्लोगन आपको याद रहेगा, समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। हर बात को समस्या मान न लें। कुछ चीजें तो हैं जीवन में और रहेंगी, जिस कलयुग के कलिकाल में हम रह रहे हैं, जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, घोर तिमिर छाया हुआ है, वहाँ ठोकरें न लगें ये कैसे हो सकता है? लगेंगी, लेकिन अपनी शक्तियों को जागृत रखते हुए, अपने सद्विवेक का प्रयोग करते हुए, सहज भाव से जीवन की समस्याओं को समाप्त करना है। तो हम सभी योग अभ्यास से अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। योग पर कल आपकी चर्चा होगी सवेरे की क्लास में, कल परसों होगी, कल परमात्मा के बारे में चर्चा होगी। मैं आपको एक छोटी सी फीलिंग में पुनः ले चलना चाहता हूँ। देखिए, योग के बारे में हमारे सभी बुद्धिमान संत महात्माएं बैठे हैं, सभी एक चीज जान लें। योग की शुरुआत हमारे महान देश भारत में महर्षि पतंजलि ने की थी। 8 क्रियाएं बना दी उसकी, सभी ने उसको फॉलो किया, और लक्ष्य ये था, उन्होंने महसूस कर लिया था कि मनुष्य अपनी मन की शक्तियों का केवल 20% ही यूज करता है, 80% वेस्ट। अगर इस 80% मन की शक्तियों को एकाग्र कर दिया जाए तो मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, वो न केवल मुक्ति की ओर चलेगा लेकिन अनेक सिद्धियों का स्वामी भी बन जाएगा। तो उन्होंने ये 8 अंग उसके बनाए, जिसमें एक स्वामी रामदेव जी ने बहुत प्रचलित कर दिया प्राणायाम, वो भी अच्छा है, लेकिन मन की स्थितियों पर कंट्रोल, चित्त की वृत्तियों को प्योरीफाई करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं एक चीज इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, केवल मन को शांत करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान से भी जोड़ना है, उस परम सत्ता से भी जोड़ना है जिसकी एनर्जी हमें प्राप्त होगी। थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम 3 मिनट अभ्यास करेंगे और मैं आपको ले चलूंगा मन की शक्तियों की ओर, जो शक्तियाँ आप सबके पास हैं और जिसका प्रयोग आप चाहे अपने अलौकिक फील्ड में, चाहे गृहस्थ जीवन में, चाहे किसी विशेष प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। देखिए, मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत, इससे पहले मैं संत महात्माओं के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ, आपको बहुत सरलता होगी। आइंस्टीन, जो वर्तमान विज्ञान के फादर माने जाते हैं, जिसने विज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया, एटॉमिक एनर्जी दी और बहुत कुछ दिया है संसार को, उसने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना इस दुनिया में, सूरज को सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, जहां से एनर्जी मिल रही है संसार को बहुत ज्यादा, इन सबसे परे एक पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंट है वो, लेकिन उसमें अथाह एनर्जी है, वहां से हम सबको एनर्जी मिल रही है। अभी भी आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी जब वैज्ञानिकों ने की थी तो सृष्टि का बीज क्या कहा था, क्या नाम दिया था उसको, गॉड पार्टिकल। देखो, नाम वैज्ञानिकों ने नाम दिया गॉड पार्टिकल, तो उस पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो सर्वशक्तिवान है, जो परम सत्ता है, उससे हमें अपना नाता अवश्य जोड़ना है। उससे नाता जुड़ते ही उसकी शक्तियां, उसकी प्योरिटी हमारे अंदर आने लगेगी। जैसे विज्ञान का एक सिद्धांत सुन लेंगे सभी, आपको क्लियर हो जाए कि योग अभ्यास में हमें भगवान से कुछ मांग नहीं करनी है, लेकिन अधिकार से उससे सब कुछ प्राप्त करना है। मैं यहाँ आप सब बैठे हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ कि आसमान में सूरज चमक रहा है, जरा उसको देखो यहाँ से अपने तीसरे नेत्र से, बुद्धि से, गोला चमक रहा है, इधर ढल चुका है, ढलने जा रहा है, देख सकते हैं ना एक सेकंड में। जैसे ही आपने उसको बुद्धि से देखा, उससे आपका कनेक्शन हो गया, बस ये बात जानने की है, उसकी एनर्जी का फ्लो आपकी ओर आने लगेगा। आप यहाँ बैठकर किसी व्यक्ति को याद करें, उसका फेस उभर कर आपके सामने आ जाएगा, आप उससे जुड़ गए एनर्जी के माध्यम से, आपके सुंदर वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे। ये गतिविधि रही है हमारे योग शास्त्र में भी, जो साधनाएं चली उनमें भी, कि एक स्थान पर बैठकर एक योगी दूसरे को ठीक कर सकता था, वो दूसरे को अच्छी चीजें भेज सकता था, वो उसके मन को बदल सकता था, ये वही चीज है। तो परमात्मा के स्वरूप पर हमें बुद्धि को स्थिर करना है, ताकि उसकी एनर्जी हम में आने लगे। तो मैं चाहूंगा जस्ट फॉर 2 मिनट्स हम इसका अभ्यास कर लें। चलें रेड लाइट करेंगे और बहुत डीपली पुनः शांत में एकाग्र करें फिर से स्वयं को, आत्मा पर, रूह पर। मैं चमकती हुई ज्योति, बहुत सूक्ष्म, सूक्ष्मती सूक्ष्म, चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शक्तियों से संपन्न हूँ, परम पवित्र हूँ, अपनी बुद्धि के नेत्र को उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी पर एकाग्र कर दें, बहुत ऊपर, हम जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, ज्योति बिंदु, परम सत्ता, हम सभी के परम पिता, सर्वशक्तिमान, जिनकी अनंत शक्तियां चारों ओर फैल रही है, उनकी ये शक्तियां अब मुझ में समा रही हैं, हम जुड़ गए हैं उनसे एनर्जी के द्वारा, उनकी संपूर्ण शक्तियां और प्योरिटी मुझ में समा रही है, चलते हैं मन की शक्ति की ओर। सभी स्वीकार करें, हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, हैं या नहीं हैं? महात्माएं तो ज्ञानी हैं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, हैं? हैं। आधे भाई बहने देर से आए हैं, फिर से याद दिला दूं, शेर का बच्चा शेर, हम सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली, उसके लिए नाम याद रखेंगे, मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। और ये याद करते ही आपके अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी। सबसे बड़ा लाभ, हम बचपन से सुनते आते थे कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य के मन में बहुत शक्तियां हैं, वो सोई हुई हैं, उन्हें जगाओ। कैसे जगाओ ये कोई नहीं बताता था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसे फील करें, स्वीकार करें और इसे याद करें, सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगेंगी, हमारे चारों ओर प्रभा मंडल बन जाएगा बहुत शक्तिशाली। अपने देवी देवताओं के चारों ओर किरणें निकलती हुई अंग अंग से, प्रभा मंडल, आभा मंडल, जिसको इंग्लिश में ओरा कहते हैं, वो देखा ही है ना, चित्रों में दिखाया जाता है। और आप सबने देखा है कि श्री कृष्ण छोटा बच्चा पालने में सोया हुआ है, वो राक्षसी उसके ऊपर कुछ शक्ति फेंक देती है और उसका जो प्रभा मंडल है उससे वो शक्ति टकरा के गिर जाती है। ये प्रभा मंडल हम सबके चारों ओर भी है, किसी का बहुत छोटा, किसी का बहुत पावरफुल, किसी का दूर दूर तक फैला हुआ है। जिसके संकल्प जितने शक्तिशाली हैं, जिसके अंदर जितनी प्योरिटी है, उतना ही ये प्रभा मंडल, ये ओरा दूर तक है और पावरफुल है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प से हम अपने इस आभा मंडल को बड़ा और शक्तिशाली बना सकते हैं। सभी ध्यान देंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, मैं एक सुंदर और प्रैक्टिकल विधि आपके सामने रखूंगा। उसे पहले छोटी छोटी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, शक्तियों का वास हमारे मन में है, सबको जानना है। एक बाहरी दृष्टि से दिखने वाला मोटा ताजा व्यक्ति अगर मन से कमजोर है तो उसे कमजोर कहेंगे या शक्तिशाली? कमजोर। और एक बहुत पतला दुबला व्यक्ति यदि विल पावर वाला है उसे कहेंगे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, जो समस्याओं से न घबराए, जो जीवन के चैलेंजेज को हंसते हंसते पार कर ले, वही शक्तिशाली है। ये मन की शक्तियां निरंतर वाइब्रेशंस के रूप में फैलती रहती हैं। बहुत ध्यान देने की बात है, अगर हम निगेटिव सोचते हैं, अगर हमारे मन में कमजोर संकल्प हैं, तो आत्मा से ये बैड एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती है, जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। अगर हमें अपने ब्रेन को अच्छा रखना है तो हम सुंदर विचार पैदा किया करें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, आज के हर मनुष्य के लिए, युवकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। माताएं भाई जो बैठे हैं अपने बच्चों को समझाएंगे, अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो बैड एनर्जी ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, उससे अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज बीमारियों का मुख्य कारण ये निगेटिव विचार है। हम अच्छा सोचेंगे, हमारे मन में, हम मन को दो भागों में बांट लें, मनोवैज्ञानिकों ने पांच भागों में बांटा है, हम दो पे चर्चा करेंगे, अंतर मन और बाह्य मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड इंग्लिश में। ये जो हमारा अंतर मन है ये बहुत शक्तिशाली है। मन की 90% शक्ति अंतर मन में वास करती है, और ये अंतर मन तब जग जाता है जब हमारा बाह्य मन शांत हो जाता है। ये सभी याद रखेंगे, बाह्य मन शांत हो गया, अंतर मन जग गया। देखिए, जब हम रात को सोते हैं हमारा मन शांत हो जाता है ना, सोते वक्त। अगर हमें बहुत गहरी नींद आई हो तो हम उठ के जरूर कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, कौन देख रहा था, हम तो सो गए थे। किसने महसूस किया कि नींद बहुत अच्छी आई आज? अंतर्मन ने, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जगा हुआ था। तो रात को सोते वक्त से सवेरे उठने तक और उसके बाद 10 मिनट तक ये अंतर्मन जगा रहता है और इसमें बहुत शक्ति है। ये अंतर्मन दूसरों के अंतर्मन से कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं 3 समय की आपको याद दिलाऊंगा। सोते वक्त हमारा मन शांत होता है तो अंतर्मन जग जाता है, उठते शांत रहता है 10 मिनट तक, और जो योग अभ्यास करते हैं वो इसको जब शांत करेंगे जब भी अंतर्मन पुनः जागृत हो जाएगा, तब हम अपने अंतर मन को कमांड दे दें, संकल्प दे दें, जिसको जो संकल्प चाहिए, जो कुछ जीवन में प्राप्त करना है वो इसको संकल्प दे दें, विजन दे दें। विजन माना चित्र। एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ से मैंने संकल्प शक्ति और योग की शक्तियों का प्रयोग बीमारी पर करना प्रारंभ किया था। कुछ साल पहले की बात है, गुजरात की एक माता मेरे पास आई कि मेरी आवाज चली गई है, बोलती तो हूँ पर अंदर ही अंदर बाहर नहीं आती, कई लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने उसको कहा ठीक है, तुम्हारी आवाज आ जाएगी, चिंता न करो। मैंने उसको कुछ संकल्प शक्ति के प्रयोग सिखाए, उसमें से एक ये था जो मैंने आपको कहा, विजन बनाओ। मैंने उसे कहा जब सवेरे उठो पहले 10 मिनट में विजन बनाना, चित्र बनाना कि मेरे सामने 100 लोगों की सभा बैठी है और मैं बड़े मजे से भाषण कर रही हूँ, स्वीकार कर लेना, मैं बहुत आनंद पूर्वक बोल रही हूँ। उसने ये किया, वो हमारे यही शांतिवन में ठहरी हुई थी, सेवा में आई थी। दूसरा प्रयोग उसको पानी चार्ज करने का सिखाया, पानी चार्ज करो और पियो, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। और तीसरा प्रयोग का हाथों से यहाँ पर एनर्जी देनी है, यही काम करते हैं ना ग्लैंड्स जो बोलने को आवाज को कंट्रोल करते हैं। उसने तीनों ये प्रयोग किए और वंडरफुल रिजल्ट था। 11 दिन में वो मेरे पास जब आई तो बोल के ही बताया, मैं बोलने लगी हूँ भाई जी, ठीक हो गया मेरा। विजन बनाना, आपको बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, आप सवेरे उठते ही विजन बना दो, मेरे सामने 1000 की सभा बैठी है और मैं बहुत धारा प्रवाह रूप से भाषण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आपकी वो शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, वो जागृत नहीं हैं, हमें इस तरह उनको जागृत करना है। तो सवेरे उठकर, अब बहुत ध्यान से सुन लेना सभी, जो अगली बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो इस संसार के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है, और वो ये है, उठते ही पहला विचार, एकदम पहला, आंख खुली और हमने क्या सोचा, ये हमारे जीवन पर सबसे गहरा असर डालता है। आपको समझना है कि पहला विचार मैं अपने कंट्रोल में ले लूं, मैं वही विचार करूं जो मुझे जीवन में चाहिए। देखो, मैं माताओं को सावधान किया करता हूं, घुटने दर्द है माताओं को, हम सवेरे उठे ठंड से घुटने अकड़ गए थे, पैर जो नीचे उतारा, हाय हे भगवान बहुत घुटनों में दर्द है, इसे ठीक कर दो। पहला ही संकल्प क्या कर लिया, घुटनों में बहुत दर्द है, दर्द बढ़ गया, प्रभु जी नहीं सुनेंगे, संकल्प कर दो उठते ही, न उतारो पैर नीचे, उठते ही संकल्प करो मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, विजन बना दो, मैं बाहर सड़क पर दौड़ रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली रूप से ये संकल्प आपके घुटने दर्द को ठीक करेगा। पहले संकल्प पर बहुत ज्यादा ध्यान दे दें सभी। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जीवन में कुछ मिला नहीं, जिसलिए सब कुछ किया था वो तो प्राप्त नहीं हुआ, ये संकल्प उठते ही ना आ जाए। उठते ही क्या संकल्प करेंगे, पहले अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग नमन। हमारे भारत में तो यही था ना, हर व्यक्ति अपने घरों में मंदिर बना लेता था, दूर जाने में 10-15 मिनट लग सकते हैं। उठते ही मंदिर में पहले संकल्प सुंदर, पहले संकल्पों का गहरा इफेक्ट जीवन पर पड़ता है। दूसरा संकल्प करना, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। 5 बार कर देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ये सुंदर संकल्प मैंने उदाहरण दिए, केवल आप अपने संकल्प स्वयं सुन सकते हैं। एक माता का अनुभव सुन लो, उल्टा अनुभव, आंख खोली, हे भगवान मेरी सास ने मुझे बहुत तंग कर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ, ये बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, मरती नहीं, बुढ़िया की आयु बढ़ गई, तुम्हारा दुख बढ़ गया, दोनों काम हो गए, ये नहीं करना है। जितनी बार भी सोचेंगे अब आत्मा का ज्ञान मिल गया, आत्मा तो सुख स्वरूप है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, उसको भी बहुत सुख मिले, सद्भावनाएं दे दो, वो भी अच्छी हो जाएगी, आप भी अच्छे हो जाएंगे। सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करने हैं, सीख लेंगे आज से ही, सीख लिया आपने बस 10 मिनट, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, ऐसा 10 मिनट जो हमारे 10 सालों को बदल सकता है, हर एक के पास है। ये मन की शक्ति है, ये स्पिरिचुअल पावर है, और अगर आप योग करना सीख लें, सर्वशक्तिमान से जुट जाएं, तो आपकी ये शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसकी ये शक्तियां बहुत बढ़ गई, उसका एक एक संकल्प काम करेगा। देखो हमारे भारत में जो पहले पहले ही लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, आप सब ने पंडितों को बुलाकर खूब वो मंत्र पढ़ाए हैं, सबको सुख मिले, सर्वे भवन्तु, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं। क्यों शुरू किया ये? ताकि हमारे मन के वाइब्रेशन से ये सब काम करने लगे। लोग पूछते थे तुम्हारे ये कहने से सब सुखी हो जाएंगे क्या? ऐसे ही फालतू कह रहे, मंत्र पढ़ रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा। पर ये सत्य है, हमारी भावनाओं के वाइब्रेशन संसार तक पहुंचते हैं। सवेरे उठते ही आप संकल्प करें, मैं बहुत सुखी हूँ, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो जाए, ये संकल्प आपके काम करने लगेंगे। तो सवेरे ये प्रयोग सबको करना है। मैं आपको पानी चार्ज करना सिखा देता हूँ, आपको बहुत काम आएगा। इसके प्रयोग बहुत बीमार लोगों पर हम कर चुके हैं और बीमारियां तेजी से ठीक होती हुई हमने देखी हैं। मैंने ये चीज वैज्ञानिकों से सीखी, हमारे भारत में तो ये सिद्धियां बहुत रही महात्माओं के पास, पानी चार्ज करके दे देते थे, पिला दिया, रोग ठीक हो गए। वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे प्रयोग किए, जापान के वैज्ञानिकों ने 2 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पर लिख दिया नफरत, दूसरे गिलास पे कागज चिपका कर लिख दिया प्रेम, दोनों गिलास 12 घंटे के लिए रख दिए कमरे में। सवेरे जब दोनों के पानी चेक किए तो देखो आश्चर्यजनक बात थी, जिसपे नफरत लिखा था उसमें काली तरंगे पैदा हो गई, जिसपे लव लिखा था प्रेम उसमें गोल्डन तरंगे पैदा हो गई। मैंने सोचा जब इसकी वीडियो मैंने देखी तो मैंने सोचा अगर शब्द तरंगे पैदा कर सकते हैं तो हमारे सुंदर संकल्प क्या कर देंगे। तो मैंने ये प्रयोग शुरू किए, बुखार पे किए पहले, शुगर पे किए, कैंसर पे किए, सिर दर्द पे किए, स्किन डिजीज पे किए, बहुत सफल हुए। तो क्या किया, पानी लिया गिलास में, उस पे दृष्टि डाली, 7 बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा भी संकल्प है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी चार्ज हो जाएगा। इसको आप पिएंगे, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है, ये फैक्ट्री है ना शरीर, पानी इसमें बह रहा है। अब हम सारा दिन न जाने क्या क्या सोचते हैं, उसके वाइब्रेशन से ये पूरा पानी जहरीला हो गया है। इस कारण मनुष्य के शरीर में बहुत सारे रोग हो रहे हैं, ये सिद्धांत डॉक्टरों ने भी अब समझ लिया है। हम जो कुछ सोच रहे हैं उसकी तरंगे सारे पानी को दूषित कर रही हैं। अगर हम पवित्र पानी करके इसमें भेजेंगे तो ये पानी पवित्र हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, अनेक रोग ठीक होने लगेंगे। आप सब करें अपने घरों में, बच्चों को चार्ज करके पानी पिलाएं, उनकी बुद्धि का विकास हो सकता है, उनकी छोटी मोटी बीमारियां बचपन से ही ठीक हो जाएंगी, उनके शरीर में जो पानी है वो प्योरीफाई हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। एनर्जी देख लीजिए, अभी आप सब कर सकते हैं, दोनों हाथ मिलें और अंदर में 3 बार संकल्प कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब देखिए अपने हाथ ऐसे छोड़ दीजिए, बहुत दूर नहीं, 6 इंच, हमने सामने, आपने सामने, ऐसे नहीं, ऐसे देखो आपके हाथों के वाइब्रेशन हैं, ये एनर्जी आपके हाथों में आ गई है। इसको आप ब्रेन पर रख दें, 1 मिनट, सिर गर्म हो गया हो ना कभी, मेरा भी कभी गर्म हो जाता है, मैं भी कर देता हूँ, ऐसे ही गर्म हो जाते हैं ना चलते चलते भी। घुटनों पे रख दें, जहां आपको दर्द हो वहां रख कर आप इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत सफल प्रयोग है मन की शक्ति का, बहुत अच्छा। महात्माओं को तो अनुभव है, सिर पे हाथ रख दिया बहुत कुछ हो गया, हाथों से वाइब्रेशन जाते हैं ना, राइट हैंड से ज्यादा जाते हैं, इसलिए आशीर्वाद दाएं हाथ से दिया जाता है। मन में एक सुंदर संकल्प होता है इसका कल्याण हो जाए, तो हाथ से सुखद वाइब्रेशन ब्रेन के माध्यम से सारे शरीर में पहुंच जाएंगे। ये है मन की शक्ति। हम योग अभ्यास से, आत्मिक स्मृति से इस शक्ति को बढ़ाएंगे। और आप सभी, फिर से एक बात रिपीट कर देता हूँ, सुख देंगे, प्रेम बांटेंगे, सद्भावनाएं देंगे, जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।